समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल भी होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं प्रशांत सिन्हा। नमस्कार प्रशांत।
वेरी गुड मॉर्निंग अलका एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। लिसनर्स, वी ब्रिंग फॉर यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स वी शैल ब्रिंग यू द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू टुडेज डेट। And today is Sunday, the 10th of November. So let's begin with the program.
बिल्कुल। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक और इंडिया दोनों गठबंधन के प्रमुख प्रचारक मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में दो रैली को संबोधित करेंगे तथा एक रोड शो में भाग लेंगे। आजसू और वाम दलों के नेता भी झारखंड के विभिन्न हिस्सों में रैलियों को संबोधित करेंगे। 81 सदस्य विधानसभा के लिए चुनाव इस महीने की 13 और 20 तारीख को दो चरणों में होंगे जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी।
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल रिलीज भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो संकल्प पत्र फॉर महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस इन मुंबई टुडे। मिस्टर शाह विल ऑल्सो एड्रेस 3 रैलीज इन जलगांव, बुल्ताना एंड अमरावती इन नॉर्थ महाराष्ट्र एंड विदर्भ रीजन। मीनवाइल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे विल रिलीज महाविकास अघाड़ी मैनिफेस्टो इन द स्टेट टुडे। AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, AICC महाराष्ट्र इंचार्ज रमेश चेन्नीथला, MPCC प्रेसिडेंट नाना पटोले, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर बालासाहेब थोराट, NCP SP प्रेसिडेंट जयंत पाटिल, मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़, UBT शिवसेना MP संजय राउत एंड MVA लीडर्स विल बी प्रेजेंट एट द लॉन्च फंक्शन इन मुंबई। The MPA manifesto has been drafted by a committee headed by former Chief Minister Prithviraj Chavan, former MP and former Member Planning Commission Balachandra Mungekar and NCP-SP's former MP Vandana Chavan.
भारत के 7 शैक्षणिक संस्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में जगह बनाई है। इनमें से 2 संस्थानों का नाम शीर्ष 50 में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली को 44वां और IIT बॉम्बे को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि यह उपलब्धि महाद्वीप में भारत की उच्च शिक्षा में प्रगति को दर्शाती है। इस सूची में IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान IIS, IIT कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल हैं।
In a significant development having far-reaching implications for Indian students, Canada has announced the discontinuation of its Student Direct Stream SDS visa program. The SDS is a key pathway for international students seeking permits for studies. It is said that the decision has come as part of the country's attempts to address ongoing housing shortages and resource strain. The SDS program was launched in 2018 by Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC. It was designed to fast-track study permit applications for students from 14 countries. These nations include India, Brazil, China, Colombia, Costa Rica, Morocco, Pakistan, Peru, the Philippines, and Vietnam. Under this program, the application process was faster, paving the way for quicker access to Canada's educational institutions.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक रेलवे स्टेशन पर कल हुए विस्फोट में 25 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। ये विस्फोट उस समय हुआ जब एक रेलगाड़ी क्वेटा स्टेशन से पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। BLA ने कहा कि उसका लक्ष्य पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट को निशाना बनाना था जो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद क्वेटा से लौट रही थी। पुलिस का कहना है कि मृतकों में 14 सैनिक भी शामिल हैं।
Moving on to sports, in judo, Indian athletes have won 3 bronze medals at the Senior Asian Judo Open in Hong Kong. In the women's 48-kilogram category, India's Angel Yadav triumphed over Lau Wan Lok of the host country. The Indian judoka secured the victory with an ippon, earning her a spot on the podium. In the men's 60-kilogram category, India's Jatin defeated Habib Hassan of Kuwait to claim the bronze medal, while Saurabh won his bronze in the men's 73-kilogram event, beating the American contender.
टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में भारत की सिंड्रेला दास ने इटली में WTT यूथ कंटेंडर में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है। उन्होंने कल रात फाइनल में भारत की दिव्यांशी भौमिक को 3-2 से हराया। तीसरे सेट के बाद दिव्यांशी 2-1 से आगे चल रही थी। हालांकि सिंड्रेला ने संयम बनाए रखा और बाकी दो सेट जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। इससे पहले सेमीफाइनल में सिंड्रेला ने एक अन्य भारतीय पैडलर हंसनी माथन को 3-2 से हराया था। वहीं दिव्यांशी ने देश की ही रियाना भूटा को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।
And in cricket, India will take on South Africa in the second match of the four-match T20 series at St. George's Park Cricket Ground in Kibera, South Africa this evening. The visitors are hoping to continue their excellent form in the shortest format. The match is scheduled to begin at 8:30 p.m. Indian time. In the series opener on Friday, India had defeated the hosts by 61 runs. South Africa failed to chase down the target set by India. The third match of the series will be played on Wednesday in the Centurion and the fourth match on Friday at Johannesburg.
न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है महानगरों के प्रमुख समाचारों का। तो पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं प्रशांत।
Yes, Alka. Listeners, the Asia Interconventional Complications Course is conducting a 2-day program in Chennai in association with ProMed Hospital. The course aims to address all aspects of complications in interventional procedures, focusing on strategies to reduce the risk of complications and effective methods for managing them. Over 300 leading cardiologists from India and several other countries will be in attendance. Featured speakers include Dr. William Lombardi from the USA, Dr. Masahisa Yamane from Japan, and Dr. Ahmed from Egypt. Moving on, a missile without its engine was discovered by a fisherman and brought ashore in Kasimeru, Chennai, causing quite a stir in the fishing hamlet. According to police, Dinesh Kumar, a local resident, owns the fishing boat. While casting their nets, Venkat Raman, the boatman, and several other fishermen felt something unusually heavy, and after hauling it in, they brought the object ashore and reported the discovery to the Kasimeru Fishing Harbour Police and the Fisheries Department officials. An investigation into the incident has been launched. Moving on to news from Bengaluru, the Dakshina Kannada Member of Parliament, Captain Brijesh Chota, has announced that Karnataka has received central assistance of 343.74 crore rupees to develop the Charmadi Ghat section of the National Highway. Speaking to the media in Mangaluru yesterday, he said that a 2-lane road will be developed according to the plan, with work set to begin shortly. National Highway 73, which passes through Charmadi Ghat, connects the coastal commercial city of Mangaluru with Tumkuru and then Bengaluru. The tender process for constructing the 2-lane highway has been completed. Upon completion, transportation of goods and passengers to Mangaluru will be smoother via this all-weather route. Captain Chota expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi and Union Highway Minister Nitin Gadkari for the funds allocated to widen the Charmadi Ghat road. Moving on to Hyderabad, the Telangana state government, led by Chief Minister Revanth Reddy, will celebrate its first year in office with 26 days of victory celebrations from November 14th to the 9th of December. After a cabinet subcommittee meeting in Hyderabad last evening, Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka informed that the government has undertaken revolutionary development and welfare initiatives unmatched by any other government in the country. He also said that celebrations will kick off on the 14th of November, the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, with large-scale cultural events across the state. The grand finale in Hyderabad on the 9th of December will feature performances by thousands of artists, laser shows and fireworks. And what do we have from Delhi and Mumbai, Alka?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो नागरिकों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने टोल फ्री नंबर 15100 शुरू किया है। फरीदाबाद जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना करने वाले इस नंबर पर कॉल करके घर बैठे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सुश्री यादव ने बताया कि टोल फ्री नंबर पर समाज के कमजोर, वंचित और असहाय वर्ग के जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह अब आसानी से मिल सकेगी। टोल फ्री नंबर पर मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन, मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली कानूनी सेवाओं और विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी टोल फ्री नंबर पर 24 घंटे उपलब्ध है और भारत के किसी भी हिस्से से फोन करके सहायता ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि नालसा का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को न्याय पहुंचाना है। प्रशांत, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये खबर जो है वो सबके लिए बड़ी ही अच्छी है, क्योंकि घर बैठे अगर आपको कानूनी सहायता मिल रही है, जानकारियां मिल रही हैं योजनाओं की, तो उसका लाभ जरूर उठाएं। और ये अच्छी बात है कि 2400 घंटे ये सेवा जो है वो उपलब्ध रहेगी। वहीं बात करें, दिल्ली सरकार द्वारा पिछले वर्ष हटाए गए बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स CDV की फिर से बहाली की जाएगी और उन्हें शहर के प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने के नाम काम पर लगाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने 10,000 CDV की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सभी CDV को 4 महीने के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें शहर में प्रदूषण, हॉटस्पॉट के प्रबंधन, धूल प्रदूषण और कचरा जलाने को रोकने से जैसे कामों के लिए तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। सुश्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति के कारण बस मार्शलों और CDV को अपना रोजगार गंवाना पड़ा था। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी CDV को उपराज्यपाल के आदेश के अनुरूप 1 नवंबर से वेतन दें। श्री सचदेवा ने कहा कि भाजपा द्वारा इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाए जाने के कारण मुख्यमंत्री आतिशी को बस मार्शलों की बहाली का आदेश देना पड़ा। दिल्ली सरकार शहर में पीने के पानी के टैंकरों और सीवरों की सफाई को पारदर्शी बनाने के लिए GPS मॉनिटरिंग पोर्टल से निगरानी करेगी। दिल्ली जल बोर्ड के मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से पानी के टैंकरों और सीवर सफाई मशीनों का GPS के जरिए ट्रैक किया जाएगा। पोर्टल पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ अधिकारी सुनिश्चित कर सकेंगे कि पानी के टैंकर निश्चित समय और निर्धारित स्थान पर आपूर्ति के लिए पहुंच सकें और साथ ही सीवर सफाई मशीनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। निगरानी के जरिए किसी भी प्रकार की खामियों को दूर करते हुए लोगों को समय पर सेवाएं दी जा सकेंगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके बारे में कहा कि पानी के टैंकरों और सीवर सफाई मशीनों की निगरानी के लिए GPS टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो महत्वपूर्ण कदम है। और प्रशांत, ये जो पानी, जो जल जनित बीमारियां भी होती हैं, खैर अब तो बारिश खत्म है लेकिन फिर भी पानी जो है वो साफ स्वच्छ जल होना चाहिए और ये मॉनिटरिंग की व्यवस्था जब होगी तो उसकी गुणवत्ता निश्चित रूप से और बढ़ेगी।
एब्सोल्युटली।
और बात करें मुंबई की, तो KYC अपने ग्राहक को जाने की ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया को सुदृढ़ और सरल बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने KYC मास्टर निर्देशों में 6 संशोधन पेश किए हैं। इन अपडेट का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, ग्राहकों को अधिक कुशल तरीके से शामिल करना और नवीनतम कानूनी ढांचे के साथ संरेखित करना है। ये बदलाव वित्तीय लेनदेन को अधिक सुरक्षित, सुलभ और विश्वसनीय बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं और वित्तीय संस्थानों दोनों को लाभ होगा। प्रमुख बदलावों में मौजूदा ग्राहकों के लिए सरलीकृत KYC, जोखिम स्तरों के आधार पर आवधिक अपडेट और केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री के साथ अनिवार्य एकीकरण शामिल हैं और आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर कल महाराष्ट्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। मतदाता शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर स्वीप व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के अंतर्गत चुनाव का उत्सव महाराष्ट्र का गौरव नामक कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम का शुभारंभ चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों की कई अन्य प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में किया गया और वहीं आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदान को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने विभिन्न खुदरा दुकानों, मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां को मतदान करने वाले लोगों को छूट देने के लिए राजी किया है। मतदाता अपनी स्याही लगी हुई उंगलियां दिखाकर 20 से 22 नवंबर तक छूट का लाभ उठा सकते हैं। छूट देने वाले कुछ प्रमुख मल्टीप्लेक्स में पीवीआर, एनॉक्स, मिराज, सिनेप्लेक्स और अन्य शामिल हैं। भारतीय होटल और रेस्तरां संघ के सदस्यों के अलावा आहार ने भी 20 नवंबर से 3 दिनों के लिए 20% छूट की घोषणा की है। आज सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अलका और प्रशांत के साथ और अब समय है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात कर लें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। और प्रशांत, ये जो मौसम है ये कुछ अजीब तरह का है क्योंकि दिन में गर्मी होती है और सुबह की ठंड है, शाम की ठंड है और यही जो उलझन है मौसम की वो तबीयत खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अगर हम लापरवाह हुए तो। इसलिए ये जो समय है इसमें बहुत ही सतर्कता के साथ काम करने का ये वक्त है और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यही हम चाहते हैं। और आगे की क्या योजनाएं हैं, आज संडे है, रविवार है तो स्वेटर्स हम निकाल सकते हैं, उनकी साफ सफाई और सारी चीजें पूरी तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। और दिल्ली की बात करें तो हल्की धुंध रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
And moving on, Chennai is expected to have thunderstorms with rain. The minimum temperature was at 25 degrees Celsius and the maximum expected to be around 32 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have fog or mist in the morning and partly cloudy skies later. The listeners may notice the highly varying temperature over the day. The minimum temperature was recorded at 19 degrees Celsius and the maximum expected to be around 29 degrees Celsius. And Hyderabad is expected to have partly cloudy skies with haze. The lower temperature was recorded at 19 degrees Celsius and the maximum expected of 32 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 10 नवंबर है।
Alka, we had mentioned to update our listeners about the significance of today's date, that is the 10th of November, which is World Science Day for Peace and Development. Listeners, today we are observing World Science Day for Peace and Development, a day that highlights science's vital role in society and aims to engage the public in discussions on emerging scientific issues. Alka, this day reminds us of the importance of science in our daily lives and the role that scientists play in understanding and sustaining our planet. Under this year's theme, aligned with the International Decade of Sciences for Sustainable Development from 2024 to 2033 plan, the World Science Day will emphasize reaching young people and amateur or non-scientists, inviting them to participate in the exploration of how science shapes our rapidly evolving digital world. This day is a call to action for governments, the media, schools and communities to join together in celebrating science for a peaceful, sustainable future.
बिल्कुल। और प्रशांत, जो विज्ञान है वो कई बार बहस चलती है कि वरदान है या अभिशाप है, तो वही वाली बात है कि एक माचिस की तीली है, उसे आप आग भी लगा सकते हैं और चूल्हा भी जला सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और जो विज्ञान है वो युद्ध में तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन अगर शांति में जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से सृष्टि जो है वो बहुत ही सुंदर होती है, क्योंकि जब वो युद्ध में उसका इस्तेमाल होता है तो विध्वंस होता है, और जब हम उसको सृजन में करते हैं, और निश्चित रूप से विज्ञान जो है वो हमारे जीवन को उसने बहुत ही सुविधाजनक बनाया है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि शायद हमने नेचर को कंट्रोल कर लिया है, हमें इस गलत फहमी में भी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर हमने अपने जीवन को, जो हमारे जीने का तरीका है, अगर उसको विज्ञान ने सुविधाजनक बनाया है, तो आप उसकी इज्जत करें और विज्ञान को कोशिश करें कि विज्ञान जो हो वो शांतिपूर्ण तरीके से ही उसका उपयोग हो। और खास तौर पर, विशेष तौर पर आपने कहा कि जो बच्चों के लिए, बच्चों के दिमाग में अगर हम वैज्ञानिक सोच डाल सकें, निश्चित रूप से आजकल स्कूल कॉलेजेस सब जगह ये बातें चल रही हैं, लेकिन अगर वो जो 1 से 5 साल का, जो 5 साल का बच्चा रहता है, अगर वो प्राइमरी में उसको ये इन सब चीजों के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है, तो उसका अपना पूरा जीवन जो है वो बिल्कुल वैज्ञानिक सोच से ही वो फिर आगे बढ़ता है।
साइंटिफिक टेम्परामेंट
भी होना चाहिए, और उसके साथ अगर हम उसमें कल्चर और सारी चीजें ऐड कर दें तो पूरा एक ओवरऑल उसका डेवलपमेंट, मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व वो बन जाता है।
Listeners, we are also observing World Public Transport Day today. It is a global event that celebrates the essential role of public transport in our lives. The global event raises awareness about the importance of sustainable, accessible and efficient transit systems for everyone. This year's theme, Connecting Communities, Reducing Emissions, highlights how public transportation strengthens social connections while helping to reduce the environmental impact of private vehicles. World Public Transport Day encourages to consider the benefits of greener cities and a smaller carbon footprint.
बिल्कुल, और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बातें होती हैं उसमें एक तो सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर हम मेट्रो की, दिल्ली की मेट्रो की बात करें या कहीं के भी मेट्रो की बात करें, बसों की बात करें, तो दिल्ली में मेट्रो तो खैर कनेक्टिविटी उसको लाइफलाइन ही कह सकते हैं, बिना मेट्रो के हम महानगरों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जो बसों की भी बात करें या कहीं भी, और कई बार प्रशांत ये भी होता है कि सफर के दौरान हमें बड़े, मतलब बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात भी होती है, तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है और उनको जानने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। तो जो सफर है अगर वो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट उसमें हो तो बहुत बढ़िया है। और वो जो पूलिंग की बात भी होती है, जब हम कार पूलिंग की बात, जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें अगर पूलिंग भी हम करते हैं तो वो भी एक तरह से है कि अपने कार का हम ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट निश्चित रूप से किसी भी शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Absolutely, Alka. As you had mentioned, a lifeline is what the Delhi Metro could be considered. Listeners, today is also World Immunization Day, a global event aimed at raising awareness about the critical benefits of vaccination. Immunization is a powerful tool in preventing diseases, managing outbreaks and saving millions of lives each year. Vaccines not only cut infant mortality rates in half, but also play a key role in fighting antibiotic resistance and supporting global health. By working with the body's natural defenses, vaccines help to build immunity and reduce the risk of disease, representing one of modern science's greatest achievements in protecting public health. Exactly what you had mentioned a couple of minutes ago, Alka. Moving on to historical events pertaining to today's date, listeners, today is the 10th of November, a Sunday, and in 1674, on the 10th of November, the Dutch formally ceded New Netherlands, that is New York, to the English. On today's date, in the year 1885, German engineer Gottlieb Daimler unveiled the world's first motorcycle. In 1903, on the 10th of November, the U.S. Patent Office granted inventor Mary Anderson a patent for automatic windshield wipers, a device that is ubiquitous today, a device that is used to remove or wipe the front and back windshields in automobiles.
बिल्कुल 1950 की बात करें तो अमेरिका के लेखक विलियम फॉक्टर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1991 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 96 को स्वीकृति मिली थी। और 1983 की बात करें तो बिल गेट्स ने विंडोज 1.0 की शुरुआत की थी। 1995 की बात करें तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। 1997 में चीन रूस घोषणा पत्र से दोनों देशों के बीच सीमांकन विवाद समाप्त हुआ था, और 2000 में गंगा मेकोंग संपर्क परियोजना का कार्य आरंभ हुआ था। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। 2007 की बात करें तो एक ब्रिटिश अपीलीय कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय डॉक्टरों के साथ यूरोपीय संघ के डॉक्टरों के समान बर्ताव करने का आदेश दिया था। वहीं 2008 में भारत कतर संबंधों को रणनीतिक गहराई देते हुए दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इसी वर्ष नासा ने मंगल ग्रह के लिए अपने फिनिक्स मिशन के समापन की घोषणा की थी.
And cricket lovers would remember that on the 10th of November in 1991, South Africa played its first international cricket match since 1970, a one-day match against India.
और अब समय है व्यक्तित्वों के बारे में बात करने का जो आज के दिन दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा. तो सबसे पहले आज जन्मदिन है शतरंज खिलाड़ी रोहिणी खालिदकर का. शतरंज की दुनिया का ये वो नाम है जो शतरंज खिलाड़ियों के लिए और विशेषकर लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है. मात्र 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियन बनने वाली रोहिणी को वुमेन इंटरनेशनल मास्टर होने का भी खिताब प्राप्त हुआ और शतरंज की वो ऐसी महिला खिलाड़ी रही हैं जिसने पुरुषों को शतरंज में हराकर महिलाओं के लिए भी जगह बनाई. शतरंज की पुरुष प्रतियोगिता में रोहिणी की भागीदारी ने काफी सवाल उठाए जिसके कारण उच्च न्यायालय में भी अपील हुई. सन 1981 में एशियाई शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली रोहिणी प्रथम भारतीय महिला रहीं. उन्होंने 5 बार भारतीय महिला चैंपियनशिप, 2 बार एशियाई महिला चैंपियनशिप जीती और 56 बार शतरंज में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सन 1980 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
Listeners, today is the birth anniversary of Sir Surendranath Banerjee, often known as Rashtraguru. He was an Indian nationalist leader during the British rule. He founded a nationalist organization called the Indian National Association. He was one of the founding members of the Indian National Congress. And after founding of the INC in 1885 in Bombay, Banerjee merged his organization to it with the common objectives and memberships in 1886. He was elected the Congress president in 1895 at Pune and then in 1902 at Ahmedabad. Today is the birth anniversary of renowned Odia filmmaker, director, producer and writer Manmohan Mahapatra. Listeners, he won 8 consecutive National Film Awards for his films Nishita Swapna, Sita Rati and Bhinna Samay, among others. His first film Sita Rati, made in 1976, was the first Odia film to be screened at the International Film Festival in 1982. He is the recipient of the highly prestigious Padma Shri Award of 2020 for his work in the field of art.
बिल्कुल, उड़िया सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में इनका योगदान अतुलनीय है और 30वें राज्य चलचित्र पुरस्कार में मनमोहन महापात्र को उनकी फिल्म भीजा माटी रे स्वर्ग के लिए श्रेष्ठ निर्देशक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और मनमोहन महापात्रा का निधन 13 जनवरी 2020 को हुआ.
Today is the birthday of actor, producer and author Ashutosh Rana. Born in 1967, he has worked in Marathi, Telugu, Kannada, Tamil and Hindi films along with working in various international television shows where he is still active. Primarily known for his portrayal of negative roles, he has received several awards including a Filmfare OTT Award and 2 Filmfare Awards. Listeners, besides his acting career, he is an active author and a philanthropist, and some books written by him include Maun Muskan Ki Maar and Ram Raj.
Chand taron mein nazar aaye chehra tera jab se mera dil pe hua hai sanam pehra tera ek dooje ke dil mein apna घर बनाना है तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है.
आज हम याद कर रहे हैं लोक कथाओं एवं कहावतों का अद्भुत संकलन करने वाले पद्मश्री विजयदान देथा को. अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के बाद भी उनका कर्मस्थली उनका पैतृक गांव बरूदा ही रहा और एक छोटे से गांव में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्य का सृजन उन्होंने किया और इनका जन्म 1 सितंबर 1926 को हुआ था और प्रारंभ में 1953 से 1955 तक बीजी यानी विजय ने हिंदी मासिक प्रेरणा का संपादन किया और राजस्थान साहित्य अकादमी ने उन्हें विशिष्ट साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया और दुविधा पर आधारित फिल्म हिंदी फिल्म पहेली में अभिनेता शाहरुख खान और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे. इनकी बड़ी अच्छी फिल्म थी और ये उनकी किसी रचना पर बनी अंतिम फिल्म है.
कंगना बिन हर जी के धन के ना
और घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हम अपने श्रोताओं से अनुमति लें, तो अलका सिंह और प्रशांत सिन्हा को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी।
Listeners, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, followed by the morning news at 8:15 a.m. Thank you for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.